Oh, ओम शांति। बाबा ने इस सीजन में जो हम बच्चों को होमवर्क दिया है, सब पर आपने यहाँ बच्ची में ध्यान दिया होगा। कई बातें बाबा ने हमें कही थी। क्या क्या कहा था बाबा ने जी? निर्विघ्न बनना है और खुश रहना है। सबसे बड़ा काम है खुश रहना है। हा? बेफिक्र बादशाह बनना, व्यर्थ से मुक्त बनना है और एक बाप समान स्थिति बनानी है। तो मैं समझती हूँ कि इन सभी पर आपको क्लासेस मिले होंगे। जब हम बाप समान स्थिति की बात करते हैं तो उसका अर्थ ये है कि ब्रह्मा बाबा के समान हमारे संकल्प, बोल और कर्म होने चाहिए। हमको फॉलो फादर करना है, फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं। हमसे पहले जो सेंटर पर आ रहे हैं वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे चलते हैं, वो कैसा व्यवहार करते हैं, उनको नहीं, लेकिन किसको देखना है? मम्मा बाबा को, विशेष ब्रह्मा बाबा को। और बाबा ने अपने अव्यक्त होने से पहले 18 जनवरी को 3 शब्द उच्चारण किए थे, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। यानी मनसा में जो हमारी स्थिति होनी चाहिए वो निराकारी होनी चाहिए और वाणी में निरहंकारी और कर्म में निर्विकारी स्थिति। मन वचन कर्म की जो स्थिति होनी चाहिए वो बाप समान इस प्रकार होनी चाहिए। तो निराकारी स्थिति माना अशरीरी स्थिति। तो सबसे पहले हमें अपनी चेकिंग चाहिए कि सुबह से शाम तक पूरी दिनचर्या में हम कितना देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रह पाते हैं। पहला पाठ भी यही है, आते ही ये सीखते ना, मैं आत्मा हूँ, सारा आत्मा के गुण धर्म हमें सिखाए जाते हैं। और बाबा कहता है अंतिम लेसन भी यही है, मैं आत्मा हूँ। और हर दिन की मुरली में भी बाबा हमें यही रिवाइज कराते हैं। कोई मुरली ऐसी होती है जिस दिन ये नहीं कहा जाता बाबा के द्वारा देही अभिमानी बनो, होती है नहीं। लेकिन फिर भी कितना अशरीरी हम रह पाते हैं, सारे दिन में कितना देही अभिमानी हम रह पाते हैं। अभी कृति बहन कह रही थी कि योग में हम बैठते हैं तो योग में बैठना है इसलिए बैठते हैं। तो हमारी आत्मिक स्थिति भी इतनी होती है, योग में बैठे हैं, योग शुरू करना है तो आत्मा समझ के योग शुरू करना है तो कोशिश करते हैं। फिर यदि अच्छा योग लग रहा है तो वो आत्मिक स्थिति थोड़ा समय बनती है। और योग भी अगर एकाग्रता वाला नहीं है, व्यर्थ संकल्प वाला है, तो उतना समय भी वो आत्मिक स्थिति, निराकारी स्थिति नहीं बन पाती है। और सारा दिन तो प्रश्न ही नहीं उठता है, सारा दिन तो हम कर्म कॉन्शियस होते हैं, काम करना है, कारोबार करना है, बिजनेस करना है, जॉब करना है, बुद्धि सारा समय उसमें लगी हुई है। तो पूरा दिन या तो देह अभिमान में या फिर कर्म में चला जाता है। लेकिन निराकारी स्थिति का जो अनुभव है और उसके जो लाभ हैं, उसके कारण हमें बार बार ये अंडरलाइन बाबा कराते हैं। और स्वयं ब्रह्मा बाबा ने उसका बहुत अभ्यास किया, बाबा ने उसको हल्का नहीं छोड़ा। आपने सुना भी होगा कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने, जैसे ही शिव बाबा ने पहले उनको ये आत्मा का ज्ञान दिया तो एक एक अपने घर के सदस्य को लेकर बाबा ने उस तरह से विचार किया। जसोदा आत्मा है, निर्मल शांता दादी का नाम पहले पालू था, पालू आत्मा है। ब्रजेंद्रा दादी का नाम राधिका था, राधिका आत्मा है। एक एक के नाम से बाबा लिखते थे, अपनी कॉपियां भरते थे। जब तक ये पक्का नहीं हो गया कि मैं आत्मा हूं और ये सब जो भी मेरे साथ में है ये सब भी आत्मा है। और इतनी अशरीरी स्थिति थी ब्रह्मा बाबा की कि कोई भी बाबा के सामने जाते थे, जो भी हमारी दादियां और भाई अपने अनुभव सुनाते हैं वो यही सुनाते हैं कि बाबा के सामने जाते ही अशरीरी स्थिति का अनुभव होता था, जैसे एकदम देह से न्यारे हो जाते थे। वो लाइट का अनुभव होता था। क्यों अनुभव होता था? क्योंकि स्वयं बाबा की स्थिति ऐसी थी, तो बाबा से वो अनुभव, जो भी आत्मा उनके सामने आती थी उनको अनुभव होता। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हम निराकारी स्थिति में रहते हैं, ये स्थिति बहुत न्यारा स्वयं को भी अनुभव कराने वाली है और दूसरों को भी अनुभव कराती है। आपकी आत्मिक स्थिति ज्यादा रहेगी ना तो दृष्टि वृत्ति हमारी बिल्कुल शुद्ध होती है। तो जो भी आपके संपर्क में आने वाले हैं, सारा दिन आप कितनी आत्माओं के संपर्क में आते हैं तो वो अनुभव करेंगे कि ये हमसे भिन्न है, हमारे जैसे नहीं है। इनका देखने का तरीका, इनका बोलने का तरीका न्यारा है। अगर आत्मिक स्थिति है तो ही न्यारापन अनुभव होगा, अगर आत्मिक स्थिति नहीं है तो न्यारापन अनुभव नहीं होगा। आप भी उनके जैसे ही नजर आएंगे। तो सेवा का सहज तरीका है अशरीरी स्थिति में रहते हुए कार्य करना। आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपकी स्थिति अपने आप वो साक्षात्कार कराती है अन्य आत्माओं को। फिर जब हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास ज्यादा करते हैं तो जो ज्वालामुखी स्थिति बाबा हमें कहते हैं बनाने के लिए योग में, वो हमारी सहज बनती है। तो योग की भी जो शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति है, जो बाबा हमसे चाहते हैं कि अभी हमारी योग की स्थिति इतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए, तो एकाग्रता का हम सहज अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि निराकार स्थिति बिंदु रूप स्थिति है। और परम धाम में शिव बाबा को जब हम परम ज्योति के रूप में देखते हुए, अनुभव करते हुए और अपने आप को भी आत्मा समझते हुए शिव बाबा से वहां शक्तियां लेते हैं, तो वो स्थिति आदि अनादि संपूर्ण पवित्र सर्व गुण संपन्न और सर्व शक्ति संपन्न स्थिति है, बीज रूप स्थिति जिसे हम कहते हैं, जिसमें सब सार समाया हुआ है, सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का सार समाया हुआ है। वो स्थिति का बाबा कई बार कहते हैं कि अगर हम कुछ मिनट भी उस स्थिति में स्थित होते हैं तो वो विकर्म विनाश करने वाली याद है। योग अग्नि के रूप में वो याद होती है, जैसे हम कहते हैं ना, अग्नि में कोई चीज डालते हैं तो उसकी सारी अशुद्धियां निकल जाती हैं। आप सोने को अग्नि में डालते हैं तो उसकी सारी अलॉय निकल जाती है, या दूसरी कोई चीज डालते हैं तो उसका रूप बदल जाता है, उस रूप में वो हमें वापस नहीं मिलती है। या हम जब कहते हैं कि अगर सूर्य की रोशनी में आप एक कागज रखते हैं तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर उसको हम फोकस कर देते हैं एक बिंदु पर लेंस लगा करके, तो कुछ मिनट में वो कागज जल जाता है, इतनी पावर उसमें आ जाती है। सूर्य की रोशनी तो पहले भी थी, लेकिन पावर कब आई, जब वो फोकस हो गया, एक बिंदु पर आ गया। तो ऐसे ही बाबा की शक्तियां जब मुझ आत्मा बिंदु पर पूरी तरह से एकाग्र हो रही है, तब हम ये अनुभव करते हैं। और उसके बाद जो स्थिति का अनुभव होता है वो इतनी पावरफुल स्थिति है। तो इस योग की स्थिति को दिन में कई बार हम महसूस कर पाए, उस लगन में मगन या लव में लीन स्थिति, हम जो भी उसको नाम दें, बाबा उसे कई नाम देता है, उस स्थिति की अनुभूति के लिए अशरीरी स्थिति या आत्मिक स्थिति का अनुभव होना जरूरी। नहीं तो क्या होता है, अगर हम रूरिहान में बाबा से, अब योग की तो कई स्टेजेस है ना, सीधे हम बिंदु रूप स्थिति में बाबा को याद नहीं करते हैं, साधारणतया हम या तो रूरिहान करते हैं और या फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा से मिलन मनाते हैं, या अलग अलग स्टेजेस में कई बार हमारे व्यस्त संकल्प भी चलते हैं, तो वो अनुभूति नहीं हो पाती है। लेकिन जितना ज्यादा ये अभ्यास होगा, बहुत जल्दी हम और स्टेजेस को पार करके उस शक्तिशाली योग की स्थिति की अनुभूति में पहुंच पाएंगे। और तीसरी बात कि जब हम अशरीरी स्थिति का ज्यादा अनुभव करते हैं, आज की मुरली में भी बाबा ने वरदान में ये बात कही, स्वयं को सारथी समझकर न्यारे और प्यारी स्थिति का अनुभव करते हैं तो सिद्धि स्वरूप होते हैं। तो जितना हम सारथी समझ करके चलते हैं, अपने आप को इन कर्मेंद्रियों से अलग समझते हैं, इन कर्मेंद्रियों का आधार लिया, कर्म किया और फिर न्यारे हो गए, कछुए समान जो स्थिति है, तो उस स्थिति में आत्मा अपनी सर्व शक्तियों का सहज अनुभव करती है। तो आपको जब समाने की शक्ति का प्रयोग करना है, जब सहन करने की शक्ति का प्रयोग करना है, सामना करने की शक्ति का प्रयोग करना है, अलग अलग समय पर हमें अलग अलग शक्तियों का प्रयोग करना होता है। यहाँ तक कि जब कर्म भोग का सामना होता है, शरीर में कोई बीमारी आती है या प्रकृति की तरफ से कोई हमें पेपर होता है, उस समय भी हमें इन शक्तियों की जरूरत होती है, समाना होता है, सहन करना होता है। तो ये अशरीरी स्थिति हमारे लिए एक इंजेक्शन का काम करती है। दूसरे शब्दों में ऐसे कहेंगे, जैसे बाबा कहता है कि आजकल साइंस की शक्ति के साधन है, दर्द हुआ इंजेक्शन लगाया और दर्द खत्म, कितना फास्ट, आज भी मुरली में था, कितना फास्ट साइंस के साधन हमें अलग अलग तरह की सिद्धियों का अनुभव कराते हैं, दूर की चीजें हमें समीप महसूस होती हैं, आवाज सुन सकते हैं, दृश्य देख सकते हैं। हाँ, इसी तरह से कोई दर्द खत्म करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये भी अशरीरी स्थिति जो साइलेंस की स्थिति है, उस स्थिति से हम वैसा ही अनुभव कर सकते हैं जैसे स्थूल दवाइयों से। यानी कर्म भोग कर्म योग में बदलता है और कर्म योग से वो सूली से कांटा हो जाता है। यानी कर्म का हिसाब किताब भी चुक्त होने में मदद मिलती है। और उसका कारण है कि जब हम रूहानियत की स्थिति में होते हैं तो शिव बाबा से हमें वो रूहानी शक्तियां सहज प्राप्त हो जाती, कनेक्शन डायरेक्ट होता है, लाइन क्लियर होती है, तो बाबा से दुआएं मिलती हैं आत्मा को। और वो दुआएं हमें, जो हमारे जो भी पेपर हमारे सामने आ रहे हैं उसमें जो भी शक्तियों का हमें प्रयोग करना है, उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें हम सहज पार कर पाते हैं। और ये हर एक के जीवन का अनुभव है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव तो बहुत हैं, लेकिन अगर मैं आपसे भी पूछूंगी तो आप सबके जीवन में भी ऐसे कई अनुभव होंगे कि जब आपने रियली बाबा को उस स्थिति से याद किया, यहां तक कि शरीर के कर्म भोग के समय भी, कैसे केवल बहुत कम दवाई लेने से ही हम उस बीमारी से पार हो जाते हैं। दो ढाई साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, मेरे जीवन का अनुभव बता रही हूं मैं। तो उस समय एक्सीडेंट से पहले बाबा की याद में थी मैं, और कर्म भोग तो जो है 63 जन्मों के बाबा कहता है हमें सब यही खत्म करने हैं, तो हम तो कर्म की गति तो नहीं जानते हैं कि कौन सा कर्म भोग कब हमारे सामने आने वाला है। लेकिन बाबा की याद हमें कैसे मदद करती है उसे सूली से कांटा करने में। तो ऐसा मैंने अनुभव किया कि बाबा की याद में थी तो मुझे चाहे वो कितनी भी, देखने वालों को वो लगता था, पीड़ा लगती थी कि कितनी इनको दर्द हो रहा होगा, कितना इनको चोट लगी है, दर्द महसूस हो रहा होगा, लेकिन मुझे एक सुई की नोक के बराबर भी दर्द नहीं महसूस हो रहा। जब हुआ एक्सीडेंट तब ड्रामानुसार मैं थोड़ा समय बेहोश हो गई, तो बेहोशी में पता ही नहीं चला, उस समय के दर्द का पता ही नहीं चला। और जब होश में आई तब तक डॉक्टर अपना सब काम कर चुके थे, इंजेक्शंस वगैरह जो भी उन्होंने देने थे वो दिए थे, और उसके बाद मुझे जरा भी होश में आने के बाद भी दर्द महसूस नहीं हुआ। और मेरी जो स्थिति रही उस समय भी, मैंने बिल्कुल आत्मिक स्थिति का जो सबसे ऊंचा अनुभव मैं कहूंगी मेरे जीवन का, कि जैसे ही मुझे होश आया मैंने अपने आप को बिल्कुल आत्मा रूप में महसूस किया। कैसे? मेरी स्मृति से नहीं, मुझे वो बाबा की मदद महसूस हुई। से कहते हैं बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे या मददे बाप। और 3 दिन आईसीयू में जितना समय मैं रही, जो डॉक्टर्स के हिसाब से रिस्क का पीरियड था, वो आईसीयू के समय पूरी मेरी वही स्थिति बनी रही बिना किसी मेहनत के। जो भी लोग मिलने आते थे या देखने आते थे वो भी उसे महसूस करते थे। तो ये जो हम हिम्मत रखते हैं और अपनी स्थिति को बनाते हैं तो बाबा हमें हजार कदम मदद करता है, और सचमुच हमें महसूस करते हैं कि कैसे वो बात सूली से कांटा हो करके, और कई बार कांटा भी नहीं महसूस होता, जैसे कांटे से भी वो फूल बन गया ऐसे महसूस होता है, और ही वो हमें आगे बढ़ाने वाले बन जाते हैं, ऐसे पेपर जो होते हैं हमें आगे बढ़ाते हैं। तो ये स्थिति का अभ्यास अटेंशन दे करके भी, सारा दिन में हर घंटे में आप सोचो मुझे 5 मिनट जरूर निराकारी स्थिति का अनुभव करना। हम कितने भी बिजी हैं, चाहे जहां भी हैं, जितने भी बिजी हैं, लेकिन 5 मिनट का टाइम तो हम निकाल ही सकते हैं। तो वो 5 मिनट मुझे बिल्कुल इस शरीर रूपी रथ का सारथी होकर के, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों को चलाने वाली, शरीर से बिल्कुल देह से न्यारी शक्ति हूं। जैसे बाबा शरीर का आधार लेता है, बाबा समझता है ना ये तन मेरा नहीं है, ये तन किसका है, ब्रह्मा बाबा का तन है लेकिन मैं इनका अधैया, आप दारी जी का तन है, उस तन में बाबा आते हैं, तो बाबा उसको अपना नहीं समझते लेकिन थोड़ा समय के लिए उस तन का आधार लेकर के वो कार्य करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ऐसे ही मुझ आत्मा ने इस समय, विशेष संगम युग के समय, बाबा ने कहता है आप बच्चे धर्म स्थापना के लिए अवतार हो। तो मैंने ये ब्राह्मण धर्म देवता धर्म की स्थापना के लिए इस तन का थोड़े समय के लिए आधार लिया है। हम इस संसार में और इस शरीर में मेहमान हैं। हो सकता है ऐसे सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हाँ, कि सदा ही इस शरीर में रहने वाले हैं, है ना? रहने वाले तो नहीं है लेकिन भूल जाते हैं। तो वो अपने आप को रोज याद दिलाना है और जितना ज्यादा वो स्मृति अपने आप को दिलाएंगे उतना हमें अशरीरी बनना हाँ, फिर वो एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड में यहाँ साकार वतन में, एक सेकंड में सूक्ष्म वतन में और एक सेकंड में निराकारी वतन में, तो वो ड्रिल हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी और जब चाहे जो स्थिति बनाना चाहे वो हम बना पाएंगे। और इसको बाबा एकाग्रता कहते हैं कि जब चाहे जितना समय चाहे जिस समय चाहे वो स्थिति में मन स्थित हो जाए, और वो तब जब मन सब बातों से न्यारा होगा, सहज न्यारा हो पाएगा, सहज समेटने की शक्ति का हम प्रयोग कर सकेंगे। और इसके लिए विशेष हम अमृत वेले अभ्यास करें। अमृत वेले निराकारी स्थिति बनाना बहुत आसान होता है। मन वैसे ही सारी रात हम सोए होते हैं तो अशरीरी स्थिति का अनुभव किए हुए होता है, देह से डिटैच होती है ना आत्मा जब सोती है। तो उस समय अगर उस स्थिति में हम शिव बाबा को परम धाम में याद करते हैं, अमृत वेले वो शक्तिशाली योग करते हैं, तो सारा दिन हमें नेचुरल मदद मिलती है, फिर हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और दूसरा बाबा ने कहा निर्विकारी स्थिति। तो ब्रह्मा बाबा ने, जब से ब्रह्मा बाबा ब्राह्मण बने तब से लेकर के उनकी कर्मातीत स्थिति होने तक बाबा ने इस स्थिति का अनुभव किया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी विकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त की। और जो विकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त करते हैं वही विजय माला के दाने बनते, विजय रतन बनते, ऐसे हम कहेंगे। तो मोटे रूप में जैसे ही हम ज्ञान में आते हैं तो विकारों पर हमारी विजय होने लगती है, मोटे रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन सूक्ष्म रूप में जो अंश वंश बाबा कहता है वो समय लेता है, उस पर विजय पाना आसान नहीं है। तो अगर हम विकारों के मोटे रूप की बात नहीं करेंगे, थोड़ा सूक्ष्म रूप की ही बात करेंगे, सूक्ष्म संस्कारों के रूप में जो रहते हैं, तो काम विकार का सूक्ष्म रूप, मोटे रूप में ब्रह्मचर्य का पालन हम सब करते हैं, फाउंडेशन है ब्राह्मण लाइफ का, वो हम बहुत ध्यान देते हैं, अटेंशन देते हैं। लेकिन बाबा सूक्ष्म रूप कहता है कि दृष्टि वृत्ति भी हमारी, मतलब मनसा में भी वो पवित्रता हो, तो दृष्टि सदा आत्मिक रहे। किसी को भी आप देखते हैं, हर एक आत्मा रूप में भाई भाई है, दैहिक दृष्टि हमारी नहीं होनी चाहिए। सूक्ष्म रूप तो पहला ये है, यानी जरा भी दैहिक आकर्षण का अंश वंश भी ना हो। फिर भले ही हम रहते कलयुग के वातावरण में हैं, रहते तो कलयुग के वातावरण में हैं, तो आप ऐसे दृश्य भी देखेंगे या जो भी ऐसी बातें आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन हर बार आपको अपनी चेकिंग करनी है कि कितना आप इन सब परिस्थितियों में रहते हुए भी अपने मन को पवित्र रख पाते हैं। फिर दूसरा बाबा इसका स्टेप बताता है कि कहीं भी किसी से प्रभावित भी नहीं होना। चलो हम दैहिक दृष्टि में तो नहीं आते हैं, किसी की देह का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, लेकिन गुणों से प्रभावित हो जाते हैं या किसी के सहयोग से, स्नेह से प्रभावित हो जाते हैं, ये मुझे बहुत स्नेह रखते हैं या मेरे को समय पर इनका बहुत सहयोग मिलता है या ये आत्मा में देखो कितनी विशेषताएं हैं, कितने गुण हैं, फिर उनकी तरफ थोड़ा लगाव होता है, लगाव और झुकाव दोनों साथ साथ चलते हैं, इसको अटैचमेंट बोलते हैं मां। अब उसकी निशानी क्या है, जैसे ही आप योग में बैठते हैं वो आत्मा आपके योग में विघ्न डालेगी, जिससे ज्यादा स्नेह होगा बाबा से ज्यादा वो याद आएगा, बाबा याद कम आएगा, कौन याद आएगा, वो आत्मा याद आएगी जिसने समय पर आपको सहयोग दिया। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो आप बाबा को याद नहीं कर रहे, आप उसको याद कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने दिल की बातें, दिल का लेन देन किससे करते हैं, उस विशेष सहयोगी आत्मा से करते हैं। तो समय पर कौन याद आ रहा है, बाबा की बजाय वो। ये सूक्ष्म चेकिंग है अपनी, हम सब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इसमें फंसे होते ही हैं। तो बाबा कहता है सूक्ष्म में काम विकार का अंश जीतना माना, मेरा संसार सिर्फ बाबा है, मेरा दिलाराम सिर्फ बाबा है, मेरे दिल की लेन देन किससे होनी चाहिए, सिर्फ बाबा से। अगर मुझे अपना चार्ट भी देना है तो बाबा को। तो अगर इसमें हमारी कमी है तो उस कमी को हम दूर करते जाएं। तो हम अपने योग में चेक कर सकते हैं कि कौन आत्मा योग में मेरे सामने आती है, इसका मतलब मेरा उसके साथ कहीं ना कहीं झुकाव और लगाव है अभी तक से। तो किसी के गुणों और विशेषताओं से भी प्रभावित नहीं होना है, गुण और विशेषताएं भी देने वाला दाता है, शिव बाबा है, उसने ही उस आत्मा को ऐसा बनाया है और हमें भी बनाने वाला वही है। अपने गुणों और विशेषताओं से भी प्रभावित नहीं होना है, कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने को बहुत गुणवान समझते हैं, फिर वो दूसरा रूप लेने लगता है, अभिमान, जिसे फिर निरहंकारी स्थिति में हम बात करेंगे। तो अपने से भी नहीं और दूसरों से भी नहीं। क्रोध का अंश वंश किस रूप में आता है, हम ब्राह्मण जो हैं वो बहुत ऐसे गुस्सा नहीं करते जैसे दुनिया वाले गुस्सा करते हैं ना, इतना तो हम जीत लेते हैं अपने गुस्से को कि दुनिया वालों जैसे हम छोटी छोटी बात में झगड़ेंगे नहीं, ऐसे बुरे बोल नहीं बोलेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर गुस्सा तो आता है। आप में से मैं हाथ उठवाऊंगी अभी, आप में से कौन है जो कहे हाँ हमने गुस्से को सब रूपों में जीता है। चलो सूक्ष्म रूप की बात तो नहीं, कई ब्राह्मणों को तो फिर सीधे भी गुस्सा आता है। कई बार बाबा कहते हैं काम को जीतना आसान होता है ब्राह्मणों के लिए, लेकिन क्रोध को जीतना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। और ये क्रोध ही ऐसा है जो बाप की डिसर्विस भी कराता है। आप आश्रम से ज्ञान सुन के जाते हैं और घर में जाते ही बच्चे ने कुछ गलत किया और हमें याद ही नहीं रहता कि हम मुरली में क्या सुन के आए, शुरू हो जाते हैं। फिर बच्चे आपको याद दिलाते हैं, मम्मी आप अभी मुरली सुन के आ रहे हो, दिलाते कि नहीं, तो ऐसे भी हो जाता है। तो क्या करते हैं, या आपसे मैं पूछ रही थी कि कौन ऐसे समझते हैं कि हमने गुस्से को हर रूप से जीता है। कोई भी हाथ नहीं उठा रहा है, एक ने भी नहीं जीता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने में कमी तो पाते हैं ना। तो सूक्ष्म रूप में हम नाराज होते हैं, हम गुस्सा नहीं करते लेकिन नाराज होते हैं। नाराज होने का मतलब अपने हाव भाव से दिखाते हैं, हमें पसंद नहीं है, आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा बोल रहे हो, हमें पसंद नहीं है। फिर कभी कभी वो हमारे कर्म में भी दिखाई देता है, हाव भाव में पहले दिखाई देता है फिर हमारे कर्म में भी दिखाई देता है। लेकिन हमें क्या बनना है, बाबा ने हमें क्या बताया है, क्रोध को कैसे जीतेंगे, शांति की शक्ति से। तो मैं आत्मा शांति का अवतार हूं, या शांति अगर मेरा स्वधर्म है तो बाप समान मैं रहम का सागर, क्षमा का सागर, करुणा और दया रखने वाली आत्मा हूं। तो आत्माएं गलती करेंगी, कलयुग है और आप उनसे ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो गलती नहीं करेंगी। वो गलती करेंगी, कभी आपका कहना भी नहीं मानेंगी, कभी जैसा आप चाहते हैं वैसा भी नहीं करेंगी। वो परिस्थिति तो आएगी, लेकिन परिस्थिति होते हुए भी मैं शांत हूं, ये मेरी विजय है। पेपर ही ना आए और मैं कहूं मैंने पास कर लिया, तो क्या कहेंगे, विजय हो गई? बिना पेपर के तो विजय नहीं हो सकती ना। तो इसी रूप में तो पेपर आएगा हमारे सामने, लेकिन वो पेपर आते हुए भी मैं उसे बाबा जैसी स्थिति मेरे से चाहता है, उस स्थिति से मैंने उसे पास कर लिया। आज की मुरली में भी था ना, तीन तरह से पास होना है, बाबा के पास रहना है, पास करना है और पास विद पास्ट को पास करना है। पास्ट इज पास्ट, जो पास हो गया वो पास हो गया। तो मुझे पेपर को पास करना है, तो ये अपनी चेकिंग चाहिए कि गुस्सा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां आते हुए भी अगर मेरी स्थिति हलचल में नहीं आती है, मेरे हाव भाव में परिवर्तन नहीं आता है, भले आपको किसी को कोई बात कहनी है, समझो कोई गलती करता है तो हमें उसे गाइड करना पड़ता है, कई बार अगर हम नहीं करेंगे तो वो फिर से वही गलती करेंगे, लेकिन किस तरह से, क्या बाप समान स्थिति में रह करके हम उसको गाइड कर रहे हैं या नाराज होकर के गाइड कर रहे हैं, तुमने ऐसा कर दिया, ऐसा करना चाहिए तुमको, ऐसे हम रियलाइज कराते ना उनको, तो इस तरह से कर रहे हैं, तो वो परिवर्तन हम अपने में लाएं। फिर लोभ की बात अगर हम करते हैं, तो लोभ को हम दुनिया वालों जैसा लोभ ब्राह्मणों में नहीं होता है, हम धन के पीछे इतना नहीं जाते हैं, क्योंकि हम ये समझ जाते हैं कि ये सब विनाशी है और ये कमाई हमारे साथ नहीं जाने वाली है। अविनाशी कमाई का क्या महत्व है ये ब्राह्मण समझने लगते हैं अपने जीवन में, और हम पूरा समय देते हैं, समय पर मुरली सुनना है, समय पर योग करना है, हम इसको उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। इतना परिवर्तन आता है कि नहीं आता है, कि जितना धन के पीछे आज भागदौड़ की जिंदगी लोग कहते हैं, दुनिया वाले भागते हैं, हम शायद उतना नहीं भागते, तो वो लोभ हमारे अंदर अब नहीं रहता है। लेकिन लोभ का सूक्ष्म रूप क्या है, ये तो चाहिए ना, आवश्यकता है ये हमारी, हाँ अब आवश्यकताओं की सीमा होती है, अगर वो सीमा से पार हो जाए तो फिर वो लोभ का अंश वंश हो जाता है। तो आवश्यकताओं में हम क्या समझते हैं, एक मकान होना चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए, घर में जो भी साधन आज के समय में होते हैं वो सब साधन तो होने चाहिए, एक अच्छा सा मोबाइल होना चाहिए, मैं ना ये मैं जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ, होता है कि नहीं होता है, तो ठीक है वो भी हो जाता है। बाबा के बच्चों को बाबा कहता है कि अगर आप सच्चे ब्राह्मण हैं तो सभी आवश्यकताएं सहज पूरी होती हैं, आप संकल्प करते हैं, और कई बार मैं ये कई भाई बहनों का मैं अनुभव सुनती हूँ कि संकल्प नहीं करते उसके पहले तो कैसे कैसे वो प्राप्ति हो जाती है पता ही नहीं चलता है, है ना। तो बाबा तो बच्चों को जानता है और वो हमारा पिता है, तो जैसे लौकिक में भी माँ बाप अपने बच्चों की आवश्यकताओं को समझते हैं और उसे खुद ही पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो मांगे आपसे पहले ही आप कोशिश करते हैं, तो वो तो भगवान है तो वो जानता है, और लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा एक के बजाय दो और दो की बजाय चार के उसमें चले जाते हैं तो फिर बाबा भी जानता है ना। कई बार ये भी लोभ शुभ लोभ होता है, कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि हम सोचते हैं हम ज्यादा से ज्यादा धन कमाएं, किस लिए, किस लिए, सेवा। देखो सबने अपने मन की बात कह दी, सेवा के लिए, क्योंकि बाबा की सेवा में धन लगेगा। तो ठीक है अगर आपकी सच्ची कमाई है तो धन कमाना बुरा नहीं है, बाबा भी मना नहीं करता है, सिर्फ बशर्ते कि मेरा पूरा समय जो पुरुषार्थ का है वो धन कमाने में ना लग जाए, है ना। तो अगर वो कमाई हो रही है और बाबा की सेवा में लगती है तो एक का पदम गुना, हम यहाँ ही बीज बो रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से नहीं कमाना है। ब्राह्मण बन गए फिर दुनिया में जैसे भ्रष्टाचार होता है, अपना दिल भी नहीं मानता है वैसे, ऐसा काम तो बाबा के बच्चे नहीं कर सकते, तो गलत तरीके से धन बिल्कुल कमाकर बाबा की सेवा में नहीं लगाना है। और अगर सच्ची दिल है तो बाबा ने साफ बोला है, एक का अभी अभी कुछ दिन पहले की मूर्ति में था कि गरीब का एक भी एक लाख के बराबर है, एक लाख के बराबर है ना, यही बोला था ना अभी कुछ दिन पहले की मुरली में था, अगर आपको ध्यान होगा जिन्हों जो रोज मुरली सुनते हैं। तो नाम के लिए नहीं, अगर हम स्वार्थ के लिए सेवा कर रहे हैं, देखो दो तरह से होता है, एक सच्ची दिल से सेवा होती है और एक नाम मान शान के लिए होती है, कि देखो मेरा नाम होगा, कि देखो हम इतनी धन की सेवा करते हैं, या कोई स्वार्थ हम बाबा के घर में करते हैं फिर बाबा मेरे लिए ये कर दे, कोई संकल्प करते हैं, फिर भक्ति मार्ग में मनोकामना करते हैं, भगवान तू मेरा ये काम कर दे फिर मैं क्या करूंगी। तो हम भी ऐसे बाबा से भी थोड़ा सा हम सौदा करते हैं, बाबा हम आपके लिए कर रहे हैं आप मेरे लिए, तो स्वार्थ जहां भी आता है हाँ फिर भगवान जानता है कि हमको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो फिर कर्म की गति हम नहीं जानते, वो फिर बाबा ज्यादा जानता है। तो ये हमें अपनी चेकिंग करनी है कि कहीं वो अंश वंश तो हमारे अंदर नहीं है। फिर मोह की हम बात करते हैं तो लोभ और मोह ऐसे हैं एक सिक्के के दो पहलू। लोभ किसका होता है, चाहिए चाहिए और चाहिए मुझे, और मोह किसका होता है, जो मेरे पास पहले से है हाँ वो जाना नहीं चाहिए, वो मेरा है माना उस पर मेरा अधिकार है, तो जहां मेरापन आया हाँ, बाबा कहता है वो मोह है, और जितना मेरापन होगा चाहे वो वस्तुओं में होगा चाहे वो व्यक्तियों में होगा संबंधों में होगा जहां भी हम कहें, उतना वो मोह हमें दुख देने वाला होता है, इसलिए कहते हैं मोह ही दुख का कारण है, ये कहा गया ना। और अंतिम पेपर भी है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। एक मैं आपको मिसाल देना चाहती हूँ, जैसे मानो आपके मोहल्ले में किसी की मृत्यु होती है और एक किसी अजनबी की मृत्यु होती है और एक आपके परिवार के किसी मेंबर की मृत्यु होती है, सबसे ज्यादा दुख किसका होता है, क्यों? वो अजनबी की मृत्यु हो रही है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मृत्यु तो वो भी है, मोहल्ले में किसी की मृत्यु हुई थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, और घर में हो गई तो हाँ, तो सबसे ज्यादा मोह कहाँ था। तो जितना ज्यादा मोह होगा उतना ज्यादा दुख होगा। एक बिजनेसमैन था, उसने एक नया मकान बनाया, तो जो पहले से पुराना मकान था जिसमें रह रहे थे वो बेचने के प्रोसेस में था, तो एक दिन दुकान पर वो बैठा था तो उसको समाचार मिला कि जो पुराना मकान है उसमें आग लग गई, तो घबराया एकदम क्योंकि वो सारा बेचने के उसके पेपर वेपर सब चल रहे थे। तो वो पहुंचा वहां और बहुत चिंता में टेंशन में था, मकान तो जल रहा था लेकिन घर वालों ने किसी तरह से सारा सामान वामान बाहर निकाल लिया था। तो इतने में उसका पड़ोसी आया तो उसने कहा कि भाई साहब आप क्यों चिंता कर रहे हो। उसने कहा चिंता नहीं करूं तो क्या करूं, मेरा मकान जल रहा है। उसने कहा नहीं चिंता मत करो क्योंकि आज ही आपके बड़े बेटे ने इसकी रजिस्ट्री फाइनल करके इसकी पेमेंट ले ली है, अब ये मकान आपका नहीं है। तो जैसे ही उसको पता चला मकान मेरा नहीं है और जल रहा है, जलने दो मेरा नहीं है तो मुझे क्या करना है, तो दुख कहाँ हुआ, जब तक वो मेरा था तब तक मुझे दुख था, और जैसे ही मुझे पता चला ये मेरा नहीं है, तो इसलिए बाबा हमें क्या कहते हैं, मेरा मेरा को क्या करो, मेरा है ही नहीं, किसका है, बच्चे मेरे नहीं है, किसके हैं, हाँ बच्चों के जो भी सब काम करने हैं किसको करने हैं, मुझे करने हैं बाबा को करने हैं। तो जब कुछ मेरा है ही नहीं, हाँ भक्ति में हम सिर्फ गा रहे थे हाँ कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन यहाँ तो स्वयं श्री बाबा हमें ऑफर कर रहा है कि सारा मेरा मेरा मुझे दे दो। तो जितना हम तेरा तेरा हाँ या हम बाबा को समर्पित करके चलते हैं, जितना ट्रस्टी बन करके चलते हैं, उतना हम उस दुखों से मुक्त हो जाते हैं, टेंशन से मुक्त हो जाते हैं, चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत निश्चय बुद्धि चाहिए, जितना निश्चय बुद्धि होंगे जितना समर्पित बुद्धि होंगे उतना ही मोह छूटता जाएगा। और फिर लास्ट में अहंकार, अहंकार का सूक्ष्म रूप क्या है, मोटे रूप में देह अभिमान हम सबका छूट जाता है, मैं ये हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फलाना हूँ, जो भी वो सब हम अभिमान नहीं रखते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में अहंकार कहीं ना कहीं वो मैंपन मेरापन जिसको बाबा कहता है वो विघन रूप में आता है। और वो कैसे आता है, सूक्ष्म रूप क्या है, मैं ही राइट हूँ, मैं जो कह रही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ, मेरी बात सही है, ये समझते क्यों नहीं है, है ना। तो जहाँ हम मैं को राइट समझते हैं, दूसरे को गलत समझते हैं, क्या करेंगे, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये सूक्ष्म अहंकार है कि दूसरे की बात को भी समझने की कोशिश करना, ये नम्रता है। अपनी भी बात कहना तो दूसरे की बात को भी समझने की कोशिश करना। फिर दूसरी बात, जो जिसमें सूक्ष्म अहंकार होता है वो अपनी गलती कभी नहीं मानता है, गलती हो गई तो भी जिद करेंगे, सिद्ध करेंगे कि कैसे मैं राइट हूं, मैंने गलती नहीं की, इसने ऐसा किया ना इसलिए ऐसा हुआ। तो हमेशा दूसरों के ऊपर वो ब्लेम डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तीसरी बात कि जिसके अंदर सूक्ष्म अहंकार होता है वो दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते कभी, क्योंकि अपने को बड़ा समझते ना, तो वो रिस्पेक्ट मांगते हैं, मुझे रिस्पेक्ट मिले। लेकिन जो नम्र होता है वो दूसरों को सम्मान देता है, और हम देते हैं तो हमें मिलता है, यही सिद्धांत है ना। लेकिन अगर सूक्ष्म में अहंकार है कहीं तो ये हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं। फिर जहां अहंकार होता है सूक्ष्म में, रौब रौब होता है, बाबा कहते हैं रुहाब में रहो, माना स्वमान में रहो, वो सही नशा है, वो शुद्ध नशा है, नारायणी नशा है, और अनेक स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं। लेकिन उसकी बजाय अगर थोड़ा रौब, थोड़ा तो रौब रखना चाहिए, बिना रौब रखे काम, ये पांडवों की बात है, हा? शक्तियों की बात नहीं है, क्या कहेंगे। मैं इसलिए घड़ी देख रही हूँ क्योंकि मेरे को है ना ग्लोबल हॉस्पिटल में जाना है, वहां डेंटिस्ट आए हुए हैं और उनके लिए एक प्रोग्राम रखा हुआ है, तो वो 11 बजे का टाइम है, तो मैं जल्दी ही पूरा करूंगी, फिर वहां भी टाइम पर पहुंचना है। तो अगर इस रूप में भी कहीं महसूस करते हैं हम कि हमारे अंदर वो मैंपन मेरापन है, तो वो चेकिंग करके, जैसे ब्रह्मा बाबा बिल्कुल निराहंकारी थे, कितनी बड़ी अथॉरिटी थी ब्रह्मा बाबा, भगवान का रथ था वो, चाहिए तो थोड़ा बहुत अहंकार रख सकते थे ना, लेकिन फिर भी सदा बाबा ने क्या कहा, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, मैं बच्चों का सेवाधारी हूँ, पहले बच्चे पीछे बाबा, है ना। हमेशा बच्चों को नमस्ते, हमारा एक गीत भी बजता है ना, बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। तो हमेशा अगर हम अपने को सेवाधारी समझते हैं, सेवाधारी समझेंगे तो सेवाधारी का कर्तव्य क्या होता है, निमित्त बनकर के निर्माण करना। सेवा तभी होती है जब हम नम्रता से वो कार्य करते हैं, निमित्त भाव से वो कार्य करते हैं। तो ऐसे बाप समान, ब्रह्मा बाप समान, हमें निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति बनानी है। तो मैं समझती हूँ कि इस भट्टी से जरूर आप ये लक्ष्य लेकर के जाएंगे कि जब अगली बार बाबा आएंगे तो हम बाबा को वो पूरा अपना होमवर्क करके देंगे जो बाबा हमसे चाहते हैं। ओम शांति।
एक मिनट ही गीत बजाना है ज्यादा।
ओम शांति। हम सब सविता बेन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें, एक बार एक हाथ की ताली बजावे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बाबा की अंतिम तीन शब्दों को हमें रिवाइज करा और उस स्थिति में स्थित करवाया। अभी थक गए होंगे आप सब? नहीं नहीं, हम बाबा का जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। अभी हमारा 10 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट में हम वापस आएंगे। लेकिन कल आपको वहां तक जाना पड़ा था ठंडा पीने के लिए, आज ठंडा उठ करके आपके पास हॉल के बाहर आ गया है, तो बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। और आप सोचिए आपको आज ठंडे में क्या पिलाएंगे बाबा के घर से, गन्ने का रस पिला रहे हैं। तो बाबा का डबल शुक्रिया करो कि बाबा आप जितनी पालना कर रहे उसका रिटर्न हमारे लिए करना क्या है, मुश्किल है। ऐसा है, 10 मिनट के लिए उठे और जल्दी आवे, पूनम दीदी का क्लास है इसके बाद।
ट्रांसफार्मर, छोटा ट्रांसफार्मर रहते हैं।
अच्छा।
100 वोल्ट लाइंस बोलते हैं इसको।
ओके ओके ओके।
इससे रिकॉर्डिंग करते हैं।
अच्छा, सेंटर में तो ऐसा नहीं हो सकता ना। कब, मैं कल से सोच रही थी, मैं तो आपसे पूछूंगी।
इसमें रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में डाल देते हैं।